जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि यशोदनन्दन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनन्दन जय ब्रज जन रंजन यशोदा। जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी जय हो। जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा विष्णु पाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, श्रीमती तुलसी सालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 22, अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथ्वी महाराज की भेंट, श्लोक संख्या 26 बोले हैं, 56 क्षमा करिए 56। राजेत्य नाम राजेत्य धान नाम धेय सोम राज इवा परहा सूर्य वंदिस्त्र जन ग्रहणन प्रतपंचा भुवो वसु। राजेत्य धान नाम धेय सोम राज इवा परहा सूर्य वंदिस्त्र जन ग्रहणन प्रतपंचा भुवो वसु। राजेत्य धान नाम धेय सोम राज इवा परहा सूर्य वंदिस्त्र जन ग्रहणन प्रतपंचा भुवो वसु। बोलिए और वैष्णव देवियां जल्दी मत करो कुछ, शब्दार्थ बोलिए। राजा राजा इति इस प्रकार अधात ले लिया नाम धेयम नामधारी सोम राजा चंद्रलोक का राजा इवो सदृश अपरहा दूसरी ओर सूर्यवत सूर्य देव के समान विस्तृजन वितरित करते हुए, ग्रहणन खींचते हुए, प्रतपन कठोर अनुशासन से, च भी भुवः संसार का वसु कर या लगान। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए, वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे, कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच लेता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। ये जो श्लोक है ये पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। पिछले श्लोक में जो बात बताई गई थी उसमें बात पूरी नहीं हुई थी। पिछले श्लोक में जो दूसरी पंक्ति है उसमें बताया गया था कि मनोवाग वृत्ति भी सौम्यर गुणे संरंजयन प्रजा, कि मन से, वाणी से और शारीरिक कर्मों से और ये सौम्य है, उनका जो मन का जो व्यवहार है, वाणी का व्यवहार है और शरीर का व्यवहार है, तीनों प्रकार के व्यवहार सौम्य है। तो अपने सौम्य व्यवहार से मन, वाणी और शरीर के द्वारा, अपने सौम्य व्यवहार के द्वारा और अपने गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन यानी मनोरंजन करते हुए। तो बात पूरी नहीं हुई, प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया, क्योंकि कुछ शब्दों में जो है प्रभुपाद ने बहुत महत्व दिया इसलिए तात्पर्य दे दिया, लेकिन श्लोक की बात पूरी नहीं हुई। श्लोक आज के श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि संरंजयन प्रजा, प्रजा का मनोरंजन करते हुए, कैसे, अपने गुणों के द्वारा और अपने मन, वाणी, शरीर के सौम्य व्यवहार के द्वारा, कोमल व्यवहार के द्वारा प्रजा का रंजन करते हुए यानी प्रजा को आनंद देते हुए। तो उसके ही साथ में अब ये शब्द है, राजा इति अधान नाम धेयम। तो राजा ये जो उन्होंने नाम प्राप्त किया, तो जो वाक्य है वो पिछले श्लोक से जो है इस श्लोक में चल रहा है ना। तो प्रजा का रंजन करते हुए उन्होंने राजा ये नाम प्राप्त किया। तो कोई व्यक्ति राजा नाम प्राप्त कर लेता है लेकिन वो कार्य नहीं होते उसके द्वारा, ऐसे कार्य नहीं होते, लेकिन इन्होंने जो राजा नाम प्राप्त किया वो इस कारण से प्राप्त किया। रंजयति इति राजा, जो राजा सुख प्रदान करे, रंजन प्रदान करे, मनोरंजन प्रदान करे तो वो राजा है। तो राजा इति आधार, ये राजा इस प्रकार से उन्होंने नाम प्राप्त किया, राजा इति अधान नाम धेयम। तो ये जो बात है वो पिछले श्लोक से जुड़ी हुई है। इसके बाद है सोमराज एवापरः, सोमराज दूसरे सोमराज जैसे हैं, सोमराज मैंने चंद्रमा के राजा, दूसरे चंद्रमा के राजा के समान, तो ये दूसरी बात है। और फिर तीसरी बात क्या है, सूर्यवत सूर्य के समान विसर्जन ग्रहणन प्रतपन। विसर्जन का मतलब है वर्षा देते हैं, सूर्य के समान वर्षा का विसर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वर्षा को ग्रहण करते हैं और प्रतपंस और तपाते भी हैं इस पृथ्वी को। प्रतपंस चा भुवो वसु, तो पृथ्वी को जो है, पृथ्वी से वो पानी खींचते भी हैं सूर्य के समान और पानी की वर्षा भी करते हैं और पृथ्वी को तपाते भी हैं सूर्य के समान। भुवो वसु, और वसु का मतलब है धन संपत्ति, जैसे राजा होता है तो संपत्ति कर के रूप में लेता है प्रजा से और फिर प्रजा के ही कार्य में उसको लगा देता है। तो वसु का अर्थ धन संपत्ति भी है और वसु का अर्थ जल भी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य वसु यानी जल को जो है विसर्जन ग्रहणन कि वो बरसाता भी है और ग्रहण भी करता है। उसी प्रकार से पृथु महाराज प्रजा से कर ग्रहण करते थे और फिर प्रजा के ही कार्यों में उसको खर्चा कर देते थे, तो सूर्य के समान। और प्रतिपन का मतलब शासन उनका कई मामलों में कठोर भी था, तो प्रतिपन। तो इस प्रकार से सूर्य से उपमा दी गई है इनकी, और चंद्रमा से उपमा दी गई है, और राजा का असली अर्थ बताया गया कि असली अर्थ राजा का क्या है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शीला प्रभुपाद की। इस श्लोक में महाराज पृथ्वी की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई है। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। तो चंद्रमा के राजा और सूर्य के राजा, तो ये भगवान की पालन शक्ति का एक उदाहरण है, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों। जो चंद्रमा है सोमराज, गीता में भगवान कहते हैं प्रश्नाम च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि जितनी भी औषधियाँ हैं उन सबको मैं पुष्ट करता हूँ रसात्मक चंद्रमा बन करके। तो भगवान जो है चंद्रमा के रूप में सभी औषधियों को पुष्ट करते हैं। औषधि के अंदर अन्न भी आ जाता है, सब प्रकार के अन्न हैं, वनस्पतियाँ हैं, और औषधियाँ जितनी दवाइयाँ हैं वो भी आ जाती हैं। तो दवाइयों में भी रोग दूर करने की जो शक्ति है वो चंद्रमा से आती है, और वनस्पतियों में भी जो विटामिन है वो चंद्रमा से आते हैं। अन्न में भी जो शक्ति आती है शरीर में शक्ति आती है वो चंद्रमा से ही आती है। तो चंद्रमा जो है जैसे समस्त औषधियों को पुष्ट करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी महाराज पूरी प्रजा को पुष्ट करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो एक अर्थ तो ये भी है कि पृथ्वी महाराज का दर्शन इतना शक्तिशाली है कि उनके दर्शन से ही लोगों के शरीर पुष्ट हो जाते थे। जैसे कि भागवत में बताया गया कि जब कृष्ण मथुरा में आ गए तो मथुरा के निवासी कृष्ण का दर्शन करने के कारण इतने हृष्ट पुष्ट हो गए, बूढ़े भी जवान हो गए। तो कृष्ण के दर्शन का ये परिणाम है कि मथुरा के सब निवासी हृष्ट पुष्ट हो गए और बूढ़े भी जवान हो गए, और इतनी शक्ति आ गई कि जो पानी भरने वाली स्त्रियां थीं तो वे भी शत्रुओं को लूट लेती थीं, शत्रुओं की सेना को जो है लूट लेती थीं, बच्चे भी जो है शत्रु की सेना को लूट लेते थे, है ना। तो इतनी शक्ति भगवान कृष्ण के कारण आ गई। तो ये पोषण शक्ति है, पोषण का जो कार्य है वो चंद्रमा करता है, लेकिन चंद्रमा स्वतंत्र रूप से नहीं करता, चंद्रमा में जो शक्ति है वो कृष्ण की है। इसलिए चंद्रमा को हम स्वतंत्र नहीं मानते कि स्वतंत्र रूप से चंद्रमा ये शक्ति प्रदान करता है। तो चंद्रमा अगर ये शक्ति प्रदान कर सकता है सब औषधियों में, वनस्पतियों में और दवाइयों में, तो कृष्ण अलग से स्वतंत्र रूप से भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं सब प्राणियों में, और कोई उनका दर्शन करे तो दर्शन मात्र से ही सब प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। और पृथ्वी महाराज भी भगवान के अवतार हैं, शक्तिवेश अवतार हैं, तो उनके दर्शन में भी अगर ऐसा प्रभाव है तो इसमें क्या आश्चर्य है। यहाँ पर बताया गया सोमराज ये वहाँ पर रहा कि सोमराज जो चंद्रमा जो औषधियों के राजा हैं, तो ये जो है एक दूसरे चंद्रमा के समान, और चंद्रमा चंद्रमा जो है रात्रि को प्रकाशित भी करता है। जब सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो रात्रि में अंधकार छा जाता है, तो चंद्रमा ही एकमात्र है जो रात्रि का अंधकार दूर करता है, और जितने भी दूसरे नक्षत्र हैं वो सब मिलकर के भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं करते हैं, चंद्रमा ही रात्रि का अंधकार दूर करता है। इसलिए प्रभुपाद ये कहा करते थे कि हमें जो है चंद्रमा जैसे भक्त चाहिए जो प्रचार करें और कलयुग की रात्रि का अंधकार दूर करें। कलयुग रात्रि के समान है, अंधकार कलयुग के अंधकार को दूर करें, तो बहुत से तारे नहीं चाहिए हमें जो है, ऐसे चंद्रमा चाहिए, ऐसे प्रचारक चाहिए जो कि अपने प्रचार के द्वारा लोगों के अज्ञान का अंधकार दूर करें, कलयुग के अंधकार को दूर करें, कलयुग की रात्रि का अंधकार दूर करें। तो हमें बहुत से तारे नहीं चाहिए, तारे सब मिल करके भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया सोमराज ये बापर है, दूसरे चंद्रमा के समान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। तो चंद्रमा जो है रात्रि का अंधकार दूर करता है और वनस्पतियों को और अन्न और औषधियों को शक्ति प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से भगवान देखना चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड इसी प्रकार शासित हो और पोषित हो, तो भगवान की पोषण शक्ति है। और सूर्य के राजा, तो सूर्य भी पालन करते हैं, सूर्य के द्वारा पृथ्वी का बहुत पालन होता है, क्योंकि सूर्य क्या करते हैं कि जो जल है, जितना पृथ्वी में भरा हुआ जल है वो गंदा हो जाता है, पृथ्वी के संपर्क से गंदा हो जाता है। तो सूर्य जो है उस गंदे जल को जो है शोषण करते हैं। समुद्र का भी पानी है, खारा है, उसका भी शोषण करते हैं सूर्य, और उसका जो है शुद्ध जल बना करके उसका वाष्पन करके और फिर उसको ठंडा करके, उस वाष्प को ठंडा करके बिल्कुल शुद्ध अशुद्ध जल, वर्षा का जो जल है वो प्रदान करते हैं सूर्य। तो सूर्य का बहुत उपयोग है, इतना पानी का जो शुद्धिकरण है ये सूर्य के द्वारा ही होता है। तो भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था की है सूर्य के द्वारा। तो सूर्यवत विस्तृजन, सूर्य की तरह राजा को भी जो है विस्तृजन यानी विस्तृजित करना चाहिए, यानी देना चाहिए, वर्षा करनी चाहिए। तो महाराज पृथु जो है प्रजा के ऊपर धन संपत्ति की वर्षा करते और ग्रहणन और प्रजा की संपत्ति लेते भी हैं, कर के रूप में लेते हैं। तो कर के रूप में लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं कि किसी के ऊपर भार नहीं पड़ता, इस प्रकार से कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से कर नहीं लेते हैं, राजा जो कर लेते हैं तो वे व्यापारियों से कर लेते हैं और व्यापारियों की जितनी आमदनी होती है उसका 25% राजा लेता है। तो ऐसे राजा के शासन में जो व्यापारी हैं वो बहुत प्रसन्नता से 25% अपनी आमदनी देते हैं और फिर पृथु महाराज उस कर का जो उपयोग है अपने भंडार में वो जो है जमा करते हैं। उस कर का उपयोग सबकी सेवा में, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र, सबके सुविधा के लिए उसका जो है उपयोग करते हैं। जैसे तालाब बनवाना है, कुएं बनवाना है, बावड़ी बनवाना है और बगीचे बनवाना है, प्रजा के सुविधा के लिए, प्रजा के सुख के लिए उस संपत्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि सूर्य जैसे वसु यानी जल को ग्रहण करता है और विसर्जित करता है, उसी प्रकार से महाराज पृथु प्रजा में जो धनी व्यापारी हैं उनका 25% आय आमदनी वो ग्रहण करते हैं और फिर प्रजा के ही कार्यों में लगा देते हैं। फिर वो जेब भरने में नहीं लगाते हैं कि आजकल तो जेब भरी जाती हैं, जो कर प्रजा से लिया जाता है तो उससे जो है जो शासक हैं, नेता हैं और उनके नीचे और भी अधिकारी हैं सब अपने अपनी जेबें भरते हैं। तो ये जो प्रजा से कर लिया जाता है वो अपनी जेबों को भरने के लिए नहीं किया जाता है बल्कि प्रजा के ही लाभ के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य जल अपने पास नहीं रखता, सूर्य जो है पृथ्वी का जल जो खींचता है और ज़्यादा से ज़्यादा जल तो समुद्र का खींचता है और फिर जो है वर्षा के द्वारा उन स्थानों में जल देता है जहाँ जल नहीं है और फिर अंत में सब जल समुद्र में जाता ही है। तो इतना अच्छा जो व्यवस्था है, इतनी अच्छी जो व्यवस्था है सूर्य के द्वारा जो भगवान ने बनाई है, तो उसी प्रकार पृथु महाराज का शासन है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरित करता है और साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। तो ताप और प्रकाश वितरित करता है। विसृजन का अर्थ है केवल जल ही नहीं है बल्कि ताप और प्रकाश भी है। विसृजन सूर्य के समान विसृजन करता है, तो सूर्य जो है वर्षा तो लेता है और वापस करता है, अपने पास कुछ रखता नहीं। उसी प्रकार से राजा प्रजा के कर को अपने पास नहीं रखता और अपने जो नीचे के अधिकारियों की जेबें नहीं भरता, प्रजा के ही कार्य में लगा देता है। लेकिन ताप और प्रकाश ये अपना ही है, सूर्य का अपना ही है ताप और प्रकाश। ये ताप और प्रकाश सूर्य के पास कहीं से आता नहीं है, उनका अपना है, वो भी भगवान का है। भगवान कहते हैं यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, कि जो भी तेज सूर्य में है जिसके द्वारा पूरा जगत प्रकाशित होता है, तत्तेजो विधि मामकम, वो तेज मेरा ही जान, तो भगवान का है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा है वो ताप और प्रकाश वितरित करता है, और प्रकाश का अर्थ क्या है, ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान ये मनुष्य जीवन का असली लाभ क्या है, ये प्रजा को राजा देता है। तो पहले राजा की जिम्मेदारी होती थी कि प्रजा को ये सब ज्ञान दे, आजकल की शिक्षा में ये सब ज्ञान नहीं है, और राजा क्या है, शूद्र हैं। कलयुग में जो राजा होते हैं वो शूद्र होते हैं, तो राजाओं के द्वारा ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, है? इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री चैतन्य ने जो हरे कृष्ण आंदोलन जो चालू किया है, तो इस आंदोलन के द्वारा प्रजा को ज्ञान प्राप्त होता है। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो, तो प्रजा में ही ये ज्ञान का प्रचार किया जाता है, प्रजा के द्वारा ही किया जाता है, ये आंदोलन के द्वारा किया जाता है, राजाओं के द्वारा नहीं होता है, राजाओं के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये कलयुग का लक्षण है। तो कलयुग में श्री चैतन्य ने एक अलग सी व्यवस्था की है, इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन पहले जो राजा होते थे तो राजा की ही जिम्मेदारी होती थी, ये अकेला सूर्य ताप और प्रकाश प्रदान करता है, तो प्रकाश का मतलब है कि सब प्रजा को ज्ञान देना, और राजा स्वयं जब बोलता है तो सब प्रजा सुनती है, उसकी बात सुनती है, और राजा स्वयं आचरण करता है तो सब प्रजा उसी प्रकार से आचरण करती है, वो कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा के द्वारा अगर प्रचार होता है तो बहुत प्रभावशाली होता है, तो राजा को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है प्रचार के लिए, है? अगर वो कुछ एक बात बोल देता है तो वही बात जो है उसके नीचे के अधिकारी और उसके नीचे और पूरी प्रजा में वो बात फैल जाती है। तो इस प्रकार से ताप और प्रकाश सूर्य वितरित करता है, तो इसी प्रकार से पृथु महाराज प्रकाश वितरित करते हैं और ताप वितरित करते हैं। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, और साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। आगे चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है, और दिन में सूर्य के ताप में किए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। तो प्राचीन काल में ये सब कूलर और एसी सब नहीं होते थे, प्राचीन काल में जो भी कूलर या एसी होता था उस चंद्रमा के द्वारा होता था। तो दिन भर गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप से जो झुलसे लोग होते थे, तो चंद्रमा के प्रकाश में उनको शीतलता का अनुभव मिलता था। इसलिए शीतलता में हमेशा चंद्रमा की उपमा दी जाती है, कोटि चंद्र सुशीतल, क्या है वो, निताई निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, है ना? तो कोटि एसी सुशीतल नहीं कहा जाता है, क्योंकि उस समय एसी नहीं था, करोड़ एसी के समान सुशीतल, कोटि एसी सुशीतल। लेकिन चंद्रमा ये भगवान ने ऐसा बनाया है कि शीतलता प्रदान करता है, तो दिन भर की गर्मी से झुलसे हुए जो लोग थे चंद्रमा की किरणों में शीतलता प्राप्त करते थे। तो प्रभुपाल लिखते हैं कि चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है, और दिन में सूर्य के ताप के में किए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। तो बहुत आनंद चंद्रमा के प्रकाश में प्राप्त होता है, तो सूर्य की भी आवश्यकता है, सूर्य के ताप की आवश्यकता है, लेकिन सूर्य के ताप से जो लोगों को असुविधा होती है वो दूर होता है चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत उत्तम है, एक दूसरे की पूरक है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्यदेव के समान पृथु महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह पृथु महाराज एक ओर जनता पर कर लगाते और नागरिकों तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते कि कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस ना करता। तो सूर्य के समान प्रतपन यानी तपते हैं, सूर्य के समान तपते हैं, तो सूर्य के ताप में गर्मी के दिनों में कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकता। तो इसी प्रकार जो पृथु महाराज हैं इतने शक्तिशाली हैं कि उनके शासन में हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है। सूर्य के सामने आप आंख नहीं उठा सकते, किसकी हिम्मत है सूर्य के सामने आंख उठाने की? उसी प्रकार से पृथु महाराज के शासन में किसी की हिम्मत नहीं थी आंख उठाने की, सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी, सब झुका लेते सिर जो आ गया। तो राजा को कठोरता में भी जो है ऐसा कठोर होना चाहिए, जहाँ आवश्यकता है कठोरता की तो कठोर भी होना चाहिए सूर्य के समान, और जहाँ कोमलता की आवश्यकता है तो कोमल भी होना चाहिए, सौम्य भी होना चाहिए। तो प्रजा के लिए बहुत सौम्य है, बहुत कोमल है, लेकिन जहाँ कोई शत्रुता करता है, विद्रोह करता है और शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए पृथु महाराज का जो शासन है वो सूर्य के समान है। सूर्य जिसे तपे तो सब जो है सिर झुकाते हैं। उसी प्रकार से जो है किसी का साहस नहीं होता है, उनके अवज्ञा करने का साहस नहीं होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरी ओर वे चांदनी के समान सबों को प्रसन्न रखते हैं, चंद्रमा के समान। चंद्रमा प्रिय दर्शन, चंद्रमा को देखो तो बहुत आनंद आता है, सूर्य को आप नहीं देख सकते, चंद्रमा को देखो तो बहुत आनंद है। तो चंद्रमा के समान भी है, एक ही व्यक्ति जो है सूर्य के समान भी है और चंद्रमा के समान भी है, है ना। तो भगवान की सृष्टि में तो दो अलग अलग वस्तु हैं, सूर्य अलग है चंद्रमा अलग है, लेकिन पृथ्वी महाराज में जो है दोनों गुण हैं, तपते हैं तो सूर्य की तरह तपते हैं और शीतलता भी प्रदान करते हैं तो चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करते हैं। तो बहुत शीतल हैं, बहुत प्रसन्न है, रखते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान की व्यवस्था, ये भगवान की व्यवस्था है। तो सूर्य और चंद्रमा जो भगवान ने दिए हैं तो ये भगवान की व्यवस्था है, है ना। लेकिन कितना अज्ञान है आज के वैज्ञानिकों में कि वे भगवान की व्यवस्था नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि भगवान तो हमारे सामने आते नहीं, तो हम कैसे, हम क्यों माने कि भगवान की व्यवस्था है? तो फिर वो क्या कहते हैं, ये प्रकृति है, सब नेचर के द्वारा हो रहा है, सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते थे कि प्रकृति भी अगर कार्य कर रही है तो कोई पुरुष होना चाहिए। किसकी प्रकृति? आप प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रश्न उठता है किसकी प्रकृति? जैसे कि आपकी प्रकृति है, नेचर बोलते हैं, आपका नेचर कैसा है, इनका नेचर कैसा है, तो नेचर की जब बात करते हैं तो किसका नेचर होता है ना। इसी प्रकार से प्रकृति की आप बात करते हैं कि प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है, नेचर के द्वारा सब हो रहा है, तो किसका नेचर है, किसकी नेचर है, नेचर किसकी है? भगवान की है ना। तो इस बात को नहीं समझते कि अगर प्रकृति है तो कोई पुरुष होगा जिसकी प्रकृति है। प्रकृति मैं अध्यक्षेण प्रकृति सोए देश चराचरम, तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब कार्य कर रही है। तो किसी की अध्यक्षता होगी, किसी का नियंत्रण होगा, जिसके द्वारा सूर्य है इस प्रकार से ताप दे रहा है और वो भी कितना नियंत्रित ताप दे रहा है। सूर्य पृथ्वी की दूरी भी कितनी नियंत्रित है, अगर पास आ जाए तो सब जल जाए और सूर्य अगर दूर हो जाए तो सब बर्फ बन जाए, जम जाएंगे सब, सब लोग जम जाएंगे अगर सूर्य दूर हो जाए, और सूर्य पास आए तो जल जाएंगे, या तो जम जाएंगे या जल जाएंगे। सूर्य की दूरी कितनी नियंत्रित है, तो कोई पुरुष है जिसके नियंत्रण में है ना। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भगवान है तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि आपकी क्या योग्यता है कि भगवान आपके सामने आए? और भगवान को क्या जरूरत है कि आप उनको मानो। कोई मूर्ख व्यक्ति है, कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो अगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मानता तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है उसके सामने आए कि भैया तुम मुझे मानो। आपकी क्या योग्यता है, आपका कितना महत्व है कि भगवान आपके सामने आएंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने ऐसे तर्क दिए जो अकाटे हैं, जो कि काटे नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिक लोग होते हैं तो वे नहीं मानते हैं, उनकी एक जिद होती है। तो प्रभुपाद ने इसका एक उदाहरण दिया कि दो बंगाली व्यक्ति थे। प्रभुपाद ने कहा दो बंगाली व्यक्ति थे तो सड़क से गुजर रहे थे, तो पेपर जो है कटा हुआ रखा था, बहुत सा कागज जो है कटा हुआ रखा था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये कागज जो है चाकू से काटा गया है, दूसरा बोला नहीं कैंची से काटा गया है। तो कैंची वाला बोला कैंची, चाकू वाला चाकू, तो चाकू कैंची, चाकू कैंची, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। तो आगे नदी आई, तो नदी में जो चाकू बोल रहा था उसने कैंची वाले को नदी में धकेल दिया। अब वो डूब रहा है तो भी वो कैंची का जो है इशारा कर रहा है, कैंची डूब रहा है। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग भी जो है ये जन्म मृत्यु के इस भव सागर में डूब रहे हैं, इस भव समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन वे जो है मानने को तैयार नहीं है ना। तो ये उनका एक हठ है, एक जिद है, दुराग्रह है। और इस तरह के वैज्ञानिकों की निंदा एक संत, किसी संत ने की है तो वो एक प्रभुपाद है, केवल एक प्रभुपाद। कितने संत, नामधारी संत, तथाकथित संत गए, अमेरिका गए, इन किसने वैज्ञानिकों को ऐसा मुंह तोड़ कर दिया, किसने इस प्रकार से निंदा की उनके स्थान में जाकर के, और सबने उनके उनके सामने सिर झुकाया, सबने प्रभुपाद के सामने सिर झुकाया है, और प्रभुपाद उन्हीं के स्थान में जाके उन्हीं की निंदा करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, यहाँ पर तात्पर्य समाप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो जाना चाहिए, है ना। तो वे लोग जो है अपनी अटकलें लगाते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा तो जो है सब नष्ट हो जाएगा, हाँ इसलिए ऐसा ना करो वैसा ना करो, अपनी अटकलें लगाते हैं। लेकिन भगवान की शक्ति के द्वारा ही इस पृथ्वी की रक्षा हो रही है और सब प्राणियों के जीवन की रक्षा हो रही है। इन्होंने जो नाभिकीय अस्त्र बनाए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए हैं, तो इससे तो कब का विनाश हो जाता, या विनाश के कगार पर हैं। सुरेंद्र नहीं, क्या नाम है, सुरेंद्र,
क्या नाम है,
सुरेश्वर, सुरेश्वर प्रभु। ऑन बिहाफ ऑफ टेम्पल डिवोटी वी लाइक टू वेलकम हिज गेस्ट सुरेश्वर प्रभु श्रील प्रभुपाद डिसाइपल। तो यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो जाना चाहिए। तो भगवान है जो कि पालन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो पालन कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तभी पालन हो रही, रक्षा हो रही है सबका। तो ये जो है अगर वो मान लें तब ये विज्ञान उनका असली विज्ञान बन सकता है, नहीं तो ये जो विज्ञान है ये क्या है, अज्ञान है, अज्ञान है। और प्रभुपाद क्या कहते हैं कि आज कल के जो शिक्षा क्षेत्र हैं ये कसाई खाने के समान है, अज्ञान दे रहे हैं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर विहीन जीवन आपको दे रहे हैं, ईश्वर विहीन जीवन यानी पशु का जीवन दे रहे हैं। तो कसाई खाने, कसाई खाने में पशु जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है, और ये कसाई खाने जो शिक्षा के क्षेत्र हैं इनमें मनुष्य का जो मनुष्य है जो जाता है तो उसका मनुष्य का जीवन खत्म कर देते हैं, पशु का जीवन मिल जाता है। ये कसाई खाने ऐसे हैं कि मनुष्य जाता है और पशु बन के निकलता है, ये ऐसे कसाई खाने हैं। जीवन की हत्या नहीं होती है, ये मनुष्य जीवन की हत्या कर देते हैं और पशु जीवन रह जाता है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना, तो उनका धर्म जो है समाप्त हो जाता है और वो क्या बन जाते हैं, पशु। और वो पशु जो है कैसे हैं, टाई लगा करके, कोट पैंट पहन करके, टाई लगा करके हैं, वो दो पैर के पशु बन करके निकलते हैं, तो ये कसाई खाने हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो है यहाँ बता रहे हैं कि आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो जाना चाहिए। तो अब हम और समझेंगे, राजा की जो परिभाषा है ये पहले भी 16वें अध्याय में जो बंदी हैं वो बताते हैं पृथ्वी महाराज के बारे में। तो ये क्या बताते हैं, रंजिष्यति यल्लोकम अयम आत्मविचेष्टित अथा अमुम आहु राजानम मनोरंजक मनोरंजन के प्रजा। ये 16वें अध्याय में जो बंदी लोग हैं ये ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी महाराज का गुणगान करते हैं। पृथ्वी महाराज तो मना कर रहे हैं कि अभी तो मेरे गुण प्रकट नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है कि आप लोग मेरा गुणगान करें, क्योंकि मेरे तो अभी गुण प्रकट ही नहीं हुए हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं केवल राजा बना हूँ, लेकिन मेरा अभी कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो आप लोग मेरा गुणगान मत करिए। लेकिन जो ब्राह्मणों ने उनको इशारा किया कि नहीं करो, पृथ्वी महाराज का गुणगान करो, तो ब्राह्मणों के सहारे से बंदी लोग जो है गुणगान करते हैं। तो आगे ये क्या करेंगे, तो ये बताया रंजयिष्यति यल्लोकम, जो सब प्रजा को रंजन करेंगे, मनोरंजन करेंगे। तो राजा ही जो है प्रजा का मनोरंजन करता है, कृष्ण कथा के द्वारा मनोरंजन करता है, तो मनोरंजन के लिए सब क्लब वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। रंजयिष्यति यल्लोकम अयम आत्मविचेष्टित, अपने चेष्टाओं के द्वारा जो है पूरी प्रजा का मनोरंजन करेंगे। तो राजा की सभा में भी अगर भगवान की कथा होती है, राजा भी कृष्ण कथा सुनता है, तो प्रजा भी अपने अपने घर में क्या करेगी, कृष्ण कथा सुनेगी, है ना। तो प्रजा का जो है ये मनोरंजन करेंगे। अयम आत्मविचेषित है, अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अथामम आहु राजानम, इसलिए इनको राजा कहा जाता है, मनोरंजन के प्रजा, प्रजा का मनोरंजन करने के कारण। तो प्रजा का मनोरंजन और असली मनोरंजन, एक तो मनोरंजन होता है रजोगुणी, रजोगुणी मनोरंजन कैसे होता है, विषयेन्द्रिय संयोगात यह तत्ग्रे अमृतोपम परिणाम विषमेव, एक मनोरंजन होता है रजोगुणी, जो कि विषयों के इंद्रियों के संयोग से प्रारंभ में अमृत के समान होता है और परिणाम विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम, और परिणाम में विष के समान होता है, वो रजोगुणी सुख है, एक ये मनोरंजन है। आजकल का जो मनोरंजन है वो यही है, प्रारंभ में अमृत के समान लगता है और परिणाम में विष के समान, तो एक ये मनोरंजन है। और दूसरा सात्विक सुख है, है? वो क्या है, आत्मबुद्धि प्रसादजम, अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से जो प्राप्त होता है, प्रारंभ में विष के समान है और परिणाम में अमृत के समान है। यह तदग्रे विषम परिणाम अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, तो अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से जो प्राप्त होता है वो सात्विक सुख है। तो ये जो राजा पृथु हैं ये प्रजा का जो मनोरंजन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, प्रजा के मन को शुद्ध करके, और वो जो सुख प्राप्त होता है, तो सुख प्रदान करेंगे, तो यहाँ इसलिए इनको राजा कहा गया है। और इनके बारे में बंदियों ने यह भी कहा था 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में, वसुकाल उपादत्ते काले चायम विमुंचति, वसुकाल उपादत्ते, तो समय के अनुसार ये वसु को ग्रहण करेंगे, यानी कर ग्रहण करेंगे, और काले चायम विमुंचति, और समय पर उस धन को वितरण करेंगे, त्याग देंगे, है ना। समा सर्वेशु भूतेषु प्रतिपन्न सूर्य तद्विभु, समस्त प्राणियों में समान रूप से सूर्य के समान ये जो है ताप प्रदान करेंगे, तो सूर्य के समान ताप प्रदान करेंगे। तो ये पृथ्वी महाराज के बारे में भविष्यवाणी हुई। और ये पृथ्वी के आदि राजा इसलिए भी कहे जाते हैं कि पृथ्वी महाराज के समय से ही पृथ्वी समतल हुई, नहीं तो पहले पृथ्वी समतल नहीं थी। जिस समय पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को दंड दिया कि वो अन्न उगानी रही है, तो समय पृथ्वी ने स्वीकार किया कि अन्न अब उसके शरीर में पच चुका है इसलिए वो उगा नहीं सकती है, लेकिन अब दूध के रूप में वो अन्न प्राप्त कर सकते हैं आप। जैसे गाय जब भोजन करती तो पच जाता है, तो अब वो जो है दूध के रूप में ही निकल सकता है। तो पृथ्वी देवी कहती है कि मैं बहुत समय से मैंने अन्न रखा था अपने उदर में, क्योंकि लोग ईश्वर विहीन हो गए थे तो उनको ना देने के लिए मैंने अन्न रखा था अपने शरीर के अंदर, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बहुत समय के कारण वो पच गया है। अब मैं उगाना चाहती हूँ तो नहीं उग रहा है, तो लेकिन अब वो दूध के रूप में आप ले सकते हैं। तो योग्य बछड़ा आप जो है बनाइए किसी को, जिसके कारण मैं दूध के रूप में प्रदान कर दूंगी अन्न। तो अन्न के जितने बीज हैं वो सब मनु को बछड़ा बनाया पृथ्वी महाराज ने, और पृथ्वी देवी ने गाय बन करके वो दूध के रूप में अन्न प्रदान कर दिया। लेकिन फिर पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की थी पृथ्वी महाराज से कि मुझे आप समतल कर दीजिए, क्योंकि उन दिनों बिना जोते बोए अन्न उगता था, सत्युग में बिना जोते बोए अन्न उगता था, अन्न के बीज भी कोई नहीं रखता था, इसलिए बहुत समय पृथ्वी ने नहीं उगाया अन्न, तो बीज भी नहीं था कि कोई बीज रखते ही नहीं था, तो फिर अन्न नहीं होगा और प्रजा जो है अब मरने की स्थिति में आ गई। तब पृथ्वी महाराज ने जो है पृथ्वी देवी को दंड दिया और अन्न इस प्रकार से प्रजा को प्रदान किया। फिर पृथ्वी देवी ने एक प्रार्थना की कि मुझे आप समतल कर दीजिए, क्योंकि समतल होने से वर्षा का जल मेरे ऊपर ठहरेगा और इससे मुझे अन्न उगाने में सहायता मिलेगी। तो पृथ्वी महाराज ने इस पृथ्वी को समतल करने के लिए वो सब नहीं काम किए जो आजकल होते हैं, क्या बोलते हैं वो ब्लास्टिंग करते हैं ना, जैसे यहाँ पर समतल करने के लिए ब्लास्टिंग हुई थी, खूब ब्लास्टिंग होती थी और बहुत पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है उछल उछल करके कभी हमारे कमरे में भी गिरते थे, छत को तोड़ करके कमरे में गिरते थे, तो ब्लास्टिंग में बहुत खतरा है। तो पृथ्वी महाराज ने ब्लास्टिंग नहीं की, पृथ्वी महाराज का जो धनुष था तो धनुष को एक नोक से पकड़ करके और दूसरी नोक से ऐसे ठोका और सब जितने ऊंचे ऊंचे स्थान टीले थे वो सब जो है समतल कर दिए, और उनका धनुष ऐसा था जितना दूर चाहे उतना दूर चला जाए, तो पूरी पृथ्वी को समतल कर दिए। और तब से नगर और गांव ये सब बस्तियां बनी। तो पृथ्वी महाराज के से पहले नगर और गांव नहीं होते थे, बस्तियां नहीं होती थी, ये सब ऊंची नीची जगह थी, है ना, तो कहाँ बस्ती होगी कहाँ। अब उसके बाद फिर सड़कें बनी और सब कितना मतलब बाजार हैं और जो है सोसाइटी हैं सब जो बने हैं तो पृथ्वी महाराज के कारण बने हैं, और पृथ्वी महाराज जो है पृथ्वी के पिता, इसलिए पृथ्वी नाम भी जो पड़ा है तो उसके पहले पृथ्वी नाम नहीं था, धरा नाम था पृथ्वी का, धरणी पृथ्वी नाम इसलिए पड़ा कि पृथ्वी की पुत्री तो पृथ्वी महाराज ने जो है इस पृथ्वी को एक नया आकार दिया, तो एक नया जन्म समाना चाहिए, तो इसलिए पृथ्वी जो है पृथ्वी की पिता है, पृथ्वी देवी ने उनको अपना पिता के रूप में स्वीकार किया। और पृथ्वी समतल होने के कारण प्रजा को जो है बहुत सुविधा हुई, इसलिए आदि राजा कहलाते हैं पृथ्वी महाराज, आदि राजा हैं, जैसे आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुष, आदि पुरुष गोविंद हैं, है ना, आदि कवि ब्रह्मा जी हैं या वाल्मीकि मुनि, आदि काव्य रामायण है, उसी प्रकार से आदि राजा कौन है, पृथ्वी महाराज। तो प्रजा को बसाया उन्होंने बहुत सुविधापूर्वक, स्थान दिए, इसलिए इनको राजा कहा जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि अथामुम आहु राजानम मनोरंजन के प्रजा, तो प्रजा का मनोरंजन करने के कारण इनको। और सूर्य के बारे में जैसे इसमें बताया गया है कि सूर्य के समान विसर्जन ग्रहणन प्रतिपन, ये तीन क्रियाएं हैं सूर्य की, विसर्जन ग्रहणन प्रतिपन। तो गीता में भगवान कहते हैं तपाम्य हम अहम वर्षम निग्रहणामी उत्सृजामी चा, कि मैं तपता हूँ, सूर्य बन करके मैं तपता हूँ। तो यहाँ प्रतपन शब्द है गीता में, भगवान कहते हैं तपामी अहम, तो मैं तपता हूँ, तो सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, प्रतपंस यहाँ तपामी है। फिर इसमें बताया गया विसृजन, तो इसमें भगवान के तपाम अहम वर्षम निग्रहणामी, उत्सृजामी, उत्सृजामी का मतलब देता हूँ, वर्षा देता हूँ, तो यहाँ विसृजन कहा है। और ग्रहणन, तो गीता में भगवान कहते हैं वर्षम निग्रहणामी, वर्षा को मैं निग्रहण करता हूँ, खींचता हूँ। तो ये तीनों क्रियाएं जो सूर्य की इसमें बताई गई हैं गीता में भगवान नवे अध्याय के 19वें श्लोक में ये बता रहे हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामि चा। तो सूर्य का ये कार्य है। इस श्लोक के हिंदी पद्यानुवाद में एक विष्णुप्रिया देवी हैं, उन्होंने एक कविता बनाई है इस श्लोक की, इसको सुनिए। चंद्र के समान ही उनका राजा नाम सार्थक हुआ, निज प्रजा में शीतलता सुख का उन्होंने प्रसार किया। ज्यों सूर्य ग्रीष्म काल में पृथ्वी का सब जल खींच ले, वर्षा ऋतु आ जाने पर पुनः धरा पर वर्षा दे, अपनी किरणों से उष्णता वह सबको दे, उसी विधि कर रूप में प्रजाधन ग्रहण वे करते थे। दुष्काल पड़े मुक्त हस्त से प्रजा पर ही वे खर्चते थे, इस विधि वे सब पर ही प्रभाव बनाए रखते थे। हरि बोल। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक में कुछ चर्चा की है, और आप लोगों की ओर से अब कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, चालू कर दिया मैंने। सात्विक सुख बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। बुद्धि की प्रसन्नता, इसे आप कह सकते हैं भक्ति रस, जो भक्ति का जो रस है ये बुद्धि की प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है। जो माता यशोदा कृष्ण के प्रति अपना वात्सल्य अनुभव करती हैं, तो कृष्ण मेरा पुत्र है, वात्सल्य भाव ये पैदा होता है, तो बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। ये इंद्रियों का विषयों के संसर्ग से ये सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों से अतीत है ना। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम, तो ये आत्यंतिक सुख है जो तद्बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है, ग्रहण किया जाता है। तद्बुद्धि का मतलब है भगवान में लगी हुई बुद्धि के द्वारा, जब भगवान में बुद्धि लग जाए। अति इंद्रियम, इंद्रियों से अतीत है ना। तो शांत रस, दास रस, सख्य रस, जो भी रस हैं ये सब जो है अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, है ना। तो आप जो है जो कथा सुनते हैं उसमें रस मिलता है, श्रीमद् भागवत का जो रस है, पिबत भागवतम रसम आलयम, तो भागवत रस को पियो, मुहु रहो रसिका, जो रसिका है वो आलयम का मृत्यु पर्यंत पीते रहें भागवत का रस, तो अतीन्द्रिय है, ठीक है ना। तो इंद्रिय अतीत है ये रस, तो बुद्धि प्रसन्न होती है उससे आपको जो है जो रस प्राप्त होता है बुद्धि की प्रसन्नता से, आत्मबुद्धि प्रसादजम है या तद्बुद्धि ग्राह्यम, तद्बुद्धि है, तो तद्बुद्धि तत् का मतलब भगवान, भगवान में लगी बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये रस वो है जो अमृत है, ठीक है। और कोई मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो इनको जो है जो राजा बताया गया है कि राजा इति नामधेयम, तो पिछले श्लोक में क्या बात बताई गई है जो कि जिससे ये बात जुड़ी हुई है आज के श्लोक में, कि इसलिए इन्होंने राजा नाम प्राप्त किया। एक तो राजा नाम होता है लेकिन काम वैसा नहीं होता, किसी का नाम राजा होता है, राजा नाम मात्र के होते हैं, काम के नहीं होते हैं राजा, हाँ, तो वो जो है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं और ऐश्वर्य भोगते हैं, लेकिन पृथ्वी महाराज ऐसे राजा नहीं है, असली राजा जो राजा का अर्थ होता है। तो क्या बताया गया पिछले श्लोक में, कौन बताएगा? हाँ जी, मन वाणी शरीर के द्वारा प्रजा को जो है अपने सौम्य व्यवहार से क्या करते थे, संरंजयन, संरंजयन बहुत रंजन करते थे, मनोरंजन करते थे, है ना। रंजयति थी राजा, तो राजा प्रजा का मनोरंजन करता है, राजा के द्वारा प्रजा को मनोरंजन प्राप्त होता है, है? तो हमने बताया मनोरंजन किस प्रकार का, मनोरंजन दो प्रकार का मनोरंजन हमने चर्चा की थी, कौन कौन से हैं दो प्रकार के मनोरंजन, रजोगुणी और सतोगुणी, है ना। तो रजोगुणी मनोरंजन कैसा होता है, इंद्रियों के विषयों से संयोग से जो प्राप्त होता है, प्रारंभ में क्या होता है वो
अमृत के समान,
प्रारंभ में अमृत और परिणाम में बेस। तो आजकल का जो मनोरंजन है वो यही है, प्रारंभ में अमृत और परिणाम में बेस। लेकिन पृथ्वी महाराज जो प्रजा का मनोरंजन करते हैं वो किस प्रकार का है, प्रारंभ में विष के समान परिणाम में अमृत के समान, इस प्रकार से मनोरंजन करते हैं। इसके बाद फिर बताया गया कि सूर्य के समान वे जो है विसर्जन करते हैं और ग्रहण करते हैं। तो सूर्य का बहुत अच्छा जो उदाहरण दिया है, तो कैसे इसको समझें, कौन बताएगा? हाँ आप बताइए, इधर कौन, आप बताइए। बांटते हैं, हाँ। तो सूर्य अपने पास पानी नहीं रखता, सूर्य अपने पास पानी नहीं रखता, हाँ। तो आजकल के जो नेता हैं, राजा हैं, वो सूर्य के समान नहीं हैं। वो क्या करते हैं, प्रजा का जो कर है अपनी जेब में भरते हैं, है ना। तो इसलिए सूर्य के समान हाँ इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, है ना। सूर्य और सोमराज बताया गया है, चंद्रमा के समान राजा हैं। तो चंद्रमा के समान राजा, तो इसमें क्या समझें, किस तरह से समझें चंद्रमा के समान, चंद्रमा का क्या गुण है, कौन बताएगा? शीतलता प्रदान करते हैं चंद्रमा, सूर्य के ताप से जो झुलस जाए तो शीतलता। और दूसरा चंद्रमा का गुण क्या है, पुष्ट करते हैं, फसल को जो है पोषण देते हैं। चंद्रमा के कारण ही सब शक्तियां आ रही हैं, विटामिन आ रहे हैं। और ये पृथ्वी महाराज चूंकि भगवान के अवतार हैं, तो अपने दर्शन से भी वो कार्य कर देते हैं कि जो नहीं भी खाए तो भी उनके शरीर में पूरी शक्ति आएगी बिना खाए। अगर पृथ्वी महाराज का दर्शन कर लेगा तो बिना खाए भी उसके शरीर में पूरी शक्ति आएगी, क्यों नहीं, क्या आश्चर्य। जिन भगवान के कारण चंद्रमा में ये शक्ति मिली है, तो भगवान अपने दर्शन से भी वो कार्य करें तो उसमें क्या आश्चर्य। तो पृथ्वी महाराज का दर्शन करके भी व्यक्ति को जो है पूरी शक्ति, हाँ धर्म नारायण। अच्छा, इनका जो ये चर्चा बहुत अच्छी है, चर्चा इन्होंने उठाई है, इसको समझना है कि पहले सत्वगुण में आपको आना पड़ेगा, पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा। तो भागवत आपको अगर विष के समान भी लगती है तो भी आप सुनिए, और लगता ही है कई लोगों को लगता ही है, हैं? तो क्यों रोज रोज बैठते हैं, क्यों, और वो हमसे जूनियर हैं वो क्यों प्रवचन दे रहे हैं, मैं क्यों सुनूँ, है? और कई प्रकार के दोष भी दिखाई देते हैं कि ये वक्ता इसमें दोष है, हमें सुनना नहीं है, इसका नहीं सुनना, उसका नहीं सुनना, है ना। लेकिन रोज सुनो, और प्रभुपाद ने कहा है कि मैं सुनता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा मैं सुनता हूँ, अपने शिष्यों का भी प्रवचन सुनता हूँ, और शाम को और सवेरे रोज सुनना है, जरूरी सुनना है। तो ये जो है कुछ विष के समान लगती हैं बातें, लेकिन अगर आप करेंगे तो प्रारंभ में विष, परिणाम में अमृत, और परिणाम में जो अमृत है फिर अमृत ही अमृत है, तो फिर आध्यात्मिक बन गया वो। प्रारंभ में जो विष है, परिणाम में जो अमृत हो गया, ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, वो अनंत है, फिर वो अनंत है, फिर इसमें कुछ है समस्या नहीं है। लेकिन शुद्धिकरण एक बार हो जाए तब तो सत्वगुणी सुखी जो है फिर शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है, तो फिर वो शुद्ध सत्व कहलाता है, फिर गुण नहीं कहलाता है। सत्वगुण तो गुण है, रस्सी है, बंधन है, लेकिन शुद्ध सत्व फिर बन जाता है। सत्वगुण जो है फिर गुण नहीं होता है, शुद्ध सत्व हो जाता है। तो शुद्ध सत्व वो क्या है, शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, नायम देहो देह भाजाम ने लोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम्बे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो मनुष्य का जीवन दिव्य तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है, तो तपस्या शुरू में विष के समान है, लेकिन दिव्य तपस्या यानी भक्ति की जो तपस्या है वो दिव्य है तपस्या। तो दिव्य तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे, तो जब सत्व शुद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म सुख अनंतम शुद्धेत, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो सत्व शुद्ध, सत्व की शुद्धि होती है, सत्व का मतलब बुद्धि भी होता है, बुद्धि की शुद्धि होगी तो फिर ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो फिर अनंत ब्रह्म सुख। लेकिन शुरू में आपको गुजरना पड़ेगा इस विष की स्थिति से आपको गुजरना तो पड़ेगा। आप रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, तो शुरू में विष के समान तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो इस विष की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। हाँ जी,
अभी आजकल लोग अपनी अपने को सुंदर बनाना चाहते हैं, सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपना बॉडी को स्मूथ किया जाए, जिम में जाया जाए, अपना बाइसेप्स ट्राइसेप्स कर रहे हैं, और उसके लिए उनको बीच चीज छोड़ देते हैं, बीच चीज नहीं खाते हैं, जैसे फ्राइड चिकन नहीं खाना है, पिज्ज़ा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, और युद्ध तपस्या करते हैं। और दूसरे साइड से पिज्ज़ा सब फ्राइड चिकन उनका इतना एडवर्टीजमेंट होता है, उनको खाना पड़ता है,
तमोगुण, तमोगुण में भगवान कहते यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदायतम। तो निद्रा आलस्य प्रमाद से जो सुख प्राप्त होता है, तो प्रमाद का मतलब यही है, प्रमाद का मतलब लापरवाही का सुख है, ये लापरवाही का सुख है। लापरवाही क्या है कि मृत्यु है ही नहीं, भूल जाओ, जैसे कि खरगोश है, शेर जब सामने आता है तो भाग सकता है, लेकिन वो आंखें बंद कर लेता है कि शेर नहीं है। तो ये सुख जो है तमोगुणी है, तो तमोगुणी सुख है, या आप मृत्यु को नहीं देख रहे हैं, और मृत्यु तो आई, और मृत्यु से बचने का उपाय है, खरगोश भाग सकता है, नहीं वो नहीं भागता है, वो उपाय दूसरा उपाय सोचता है कि आंखें बंद कर लो तो शेर है ही नहीं। तो मनुष्य का जीवन मिला है, आपको मृत्यु से भागने का उपाय है, आप मृत्यु से बच सकते हैं, लेकिन खरगोश की तरह आप क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं। वो सुख जो है प्रमाद उत्थम अज्ञान से उत्पन्न सुख है, वो जो है तमोगुणी सुख है। प्रारंभ में भी और परिणाम में भी सुखम मोहनम आत्मना, आत्मा को मोह में डालता है, तो ये तमोगुण कलयुग का जो है सुख तमोगुणी। हाँ जी, अंतिम
तो
भगवान की पत्नी है, धरा जो है भगवान की पत्नी है, लेकिन उन्होंने जो दंड दिया तो कारण उचित था, उचित कारण था कि पृथ्वी देवी जो है अन्न उत्पन्न नहीं कर रही है, सब प्राणियों की माता है, है? और माता भी अगर अन्न ना उत्पन्न करे तो उसको दंड मिलना चाहिए। आजकल की माताएं भी बच्चों को मारती हैं, तो उसको दंड मिलना चाहिए, तो उन्होंने दंड दिया। लेकिन जब पृथ्वी देवी ने अपना कष्ट बताया, कारण बताया, तो पृथ्वी महाराज ने फिर उस कारण पर विचार किया, दंड मतलब दिखाया, पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को दंड दिखलाया कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरे मेदे से पूरी प्रजा का पेट भरूंगा और अपनी शक्ति से, योग शक्ति से सबको धारण करूंगा, तेरी आवश्यकता ही नहीं मुझे। तो फिर पृथ्वी देव को समझ आया, तो उन्होंने कारण बताया और उपाय बताया, तो फिर उस उपाय के अनुसार पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को का जो है पालन किया और पृथ्वी से वो सब अन्न प्राप्त कर लिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पाद सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।